अब युद्ध भूमि में क्या कुछ हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता था। भय, क्रौर्य, शौर्य सभी स्वच्छंद भावनाओं का विस्फोट कब हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता था। अब युद्ध का यज्ञ कुंड सर्वग्राही दावानल में रूपांतरित हो गया था। भीम, कर्ण, अर्जुन इन तीनों ने ही लाखों योद्धाओं को यमसदन भेज दिया था। जहां जहां वे तीनों सामने दिखाई दे जाते वहीं सैनिक इतस्तत दौड़ने लगते। रणभूमि पर रक्त मांस की कीचड़ योद्धाओं के तथा हाथी घोड़ों के पैरों के नीचे से और रथ चक्रों की हालों के नीचे से सरकती बहती हुई क्षण प्रति क्षण दक्षिण की ढलान की ओर संचित होती जा रही थी। उस भाग पर दलदल की एक पट्टी ही तैयार हो गई थी। कोई भी दक्ष और कुशल सारथी अपने रथ को उस भाग की ओर ले जाने को तैयार नहीं था। दाई ओर नकुल और कर्ण पुत्र विशेषेन का जो युद्ध हो रहा था वह अब चरम सीमा पर पहुंच गया था। कोई किसी से हार नहीं मान रहा था। पांचाली की वेणी संवार कर लौटे हुए क्रुद्ध भीम और कर्ण का सामना हो गया। एक दूसरे को देखते ही वे ऐसे जूझने लगे जैसे शतश्रृंग पर्वत पर दो मदमस्त हाथी हथिनी की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हों। दोनों के अमित सामर्थ्यवान, निडर, युद्ध कुशल और भयंकर थे। कर्ण का सुनहला शरीर सूर्य किरणों की तरह चमक रहा था। भीम का रक्तवर्णी शरीर लाल फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष की तरह दहक रहा था। वे एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे दो प्रचंड महानद एक दूसरे के विपरीत आकर आपस में टकराते हों। भीम के मन में कसक थी कि घटोत्कच की, कर्ण के मन में अखाड़े के प्रतोद की, भीम द्वारा वधित पुत्र की। आकाश के महातारे टूटकर गिरते समय अवकाश में ही जैसे एक दूसरे पर टकराते हैं वैसे ही वे एक दूसरे पर भयानक आक्रमण करने के लिए टकराने लगे। शूल, तोमर, चक्र, गदा, खड्ग जो हाथ पड़ जाए वही शस्त्र लेकर मर्मस्थल वेद लेकर अविरत फेंकने लगे। अनेक बार कर्ण को भीम पर प्राणांतक बाण फेंकने का अवसर मिल रहा था फिर भी वह जानबूझकर अपने अचूक बाणों का समूह उसकी केवल भुजदंडों और जंघाओं के मांसल भाग पर ही छोड़ रहा था। बीच बीच में वह दोनों ही मर्मभेदी आघात होते ही मूर्छित हो रहे थे। सचेत करने के लिए औषधि वनस्पति युक्त लकड़ी की नालिका को सारथी जैसे ही नाक पर रखते वैसे ही निद्रा से उठे वे वनराज की तरह क्षण भर में तन कर वे खड़े हो जाते और शस्त्र फेंकते। उनकी युद्ध कक्षा में जाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था। महाग्रह जैसे दिखाई देने वाले दोनों महारथी एक घड़ी तक अथक लड़े। कोई किसी से हार नहीं मान रहा था। टकराने वाले लौ शस्त्रों के स्फुलिंग रुकते नहीं थे। कांटे का संग्राम समाप्त नहीं हो रहा था। इतने में रथ दौड़ाता हुआ अश्वत्थामा आकर कर्ण के रथ से भिड़कर खड़ा हो गया। अंगराज, तुम्हारा पुत्र विशेषेन अर्जुन के बाणों के जाल में दरियाई घोड़े की तरह छटपटा पड़ा है। दौड़ो, उसको संरक्षण दो। पीछे मुड़कर भी न देखता हुआ मस्तक पर फहराने वाले वस्त्र को संवारता हुआ वह विशेषेन को संरक्षण देने के लिए भी दौड़ पड़ा। बचे खुचे 10-15 दुर्योधन बंधुओं ने आगे बढ़कर भीम को सीधे अपने ऊपर लेते हुए कर्ण को मुक्त किया। रणांगण के दक्षिण भाग के कीचड़ की पट्टी के किनारे से जैसे तैसे शल्य उसके यात्रा रथ को वृषसेन के चारों ओर बने हुए पांडवों के घेरे के पास ले आया एकदम दक्षिण की ओर। अब समरांगण के स्पष्ट रूप से दो भाग किए जा सकते थे। उत्तर की ओर भीम, सातकी, दृष्टद्युम्न, सहदेव, युधिष्ठिर इनसे लड़ने वाले दुर्योधन बंधु, कृप, सैंधव इनका एक भाग और दक्षिण की ओर वृषसेन, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन इनके घेरे में से अचूक वृषसेन को लक्ष्य बनाने के लिए घात लगाए अर्जुन, नकुल, उत्तमौजा आदि का दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में अमीन टीले की पादभूमि से लेकर विशेषेन के चारों ओर बने हुए घेरे तक वह दलदल की पट्टी फैली हुई थी। उस ओर कोई भी नहीं सरक रहा था। अपने पुत्र को अर्जुन के बाणों के जाल से बचाने के लिए आया हुआ कर्ण बड़ी कठिनता से विशेषेन के चारों ओर छाए घेरे तक पहुंच पाया। इतने में शकुनी, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन की चुनौती देने वाले अर्जुन ने उसी समय सामने आकर खड़े हुए कर्ण से कहा, सुतपुत्र, तुम्हारे पुत्र इस ऋषसेन को आज तुम सबके सामने मारता हूँ जैसे तुमने मेरे प्रिय अभी को मारा था। फिर उसने एक चंद्रमुख बाण ऐसा मारा कि पहले से ही बाणों के घेरे में रथ में छिपा हुआ परंतु सांभर की तरह गर्वीला दिखाई देने वाला ऋषसेन का मस्तक क्षण भर में धड़ाम से धरती पर जा गिरा। असंख्य जिह्वाएं दांतों के नीचे आ गई। ज्येष्ठ कर्ण पुत्र ऋषसेन गिर गया। पांडव सेना ने हमारे रथ के पीछे रणवाद्यों का कोलाहल किया। अर्जुन के सम्मुख रुकना ठीक न समझकर प्राण लेकर भागने वाले कुरु सैनिक दिग्भ्रांत हो गए। वृषसेन गिर गया यह देखकर कर्ण ने अपने जीवन में पहली बार सिर झुका लिया। वृषसेन के मृतदेह के पास लाकर शल ने उसका रथ रोका। धनुष फेंक कर वह रथ से नीचे उतरा अयाल कटे हुए सिंह की तरह। अपने नीले नेत्रों से झरने वाले उष्ण अश्रुधाराओं को वह महावीर भी नहीं रोक सका। दूर पड़ा वह वृषसेन का मस्तक उसने उठाया। सूर्य को अर्घदान करने वाली, याजकों को धन्याधन दान करने वाली, विजय धनुष उठाने वाली उसकी अंजलि में आज उसके प्रिय पुत्र का जीवन की सभी आशा आकांक्षाओं का केंद्र अपने ज्येष्ठ पुत्र का सिर कमल था। वृषसेन का सिर उसके धड़ पर पुनः रखते समय सूर्यपुत्र का धरती की क्षुद्र आशाओं आकांक्षाओं के दलदल में पनपने वाले प्रेम का विश्वास ही नष्ट हो गया। धरती की पीठ पर संचित भिन्न भिन्न कुलों की उच्चता निचता का, अहंकारी सामर्थ्य का, छलनामय मैत्री का वदृढ़ मन से पूर्ण रूपेण त्याग करके खड़ा हो गया। मृत पुत्र के देह की उसने सिसकते हुए एक प्रदक्षिणा की। अब उसका संपूर्ण शरीर धूमकेतु बन गया था। किसी भी नाते के पैरों में उलझने वाले पाश अब उसको मोह नहीं सकते थे। कीर्ति के अथवा प्रीति के धागे अब उसे रोक नहीं सकते थे। अब उसका नाता एक से ही था, असीम मर्यादा रहित अनंत नीले आकाश से, सिर पर स्थित तप्त सूर्य केंद्र से। नीचे झुककर विशेषण के मस्तक पर एक बार दीर्घ अवग्रहण कर उठते हुए उसने कर्ण भाग फुलाकर गर्म गगन भेदी गर्जना की। आक्रमण 12। अर्जुन के पराक्रम से भयभीत होकर भागने वाले कुरु सैनिक कील की तरह जहां के तहां रुक गए पांडव सेना पर पुनः प्राणपण से आक्रमण करने के लिए। कुरुओं की बची खुशी समस्त सेना एकत्रित कर वह अब हमारे नंदी घोष की ओर समुद्री पवन की तरह आ रहा था। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया था। दक्षिण की ओर कीचड़ के दंदल में उसका रथ उतारे बिना शैल उसके रथ को हमारे रथ के सामने खड़ा ही न कर सके, ऐसे उपयुक्त स्थान पर मैंने नंदी घोष को खड़ा कर दिया। कुशल शैल ने दलदल की उस पट्टी में यह देखने के लिए कि कम से कम चार हाथ ही सूखा स्थान कहीं मिल सकता है या नहीं, रथ को पट्टी के आसपास घुमाया। अंत में विवश होकर रुक कर वह कर्ण से बोला, राधे, आज का दिन अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है। इस दलदल में रथ घुमाने में खतरा है। वह हंस पड़ा, केवल हंसा। कुछ न कहकर उसने दलदल की पट्टी के बीच रथ ले जाने के लिए उंगली उठाकर आज्ञा दी। उसका और हमारा दोनों के रथ आमने सामने खड़े हो गए। तत्क्षण नीचे उतरकर मैं औगुने के तेल का गाढ़ा ले अपने रथ के दोनों ओर चक्रों पर सब ओर से कर दिया। क्या पता उसके रथ का पीछा करते हुए हमें ही अपना रथ दलदल में न डालना पड़े। ऐसे समय में औगुन के चिकने तेल के कारण हाड़ मांस की कीचड़ में उसके फंसने की संभावना नहीं थी। औगुन की लकड़ी का पात्र लेकर मैं पुनः नंदी घोष पर चढ़ गया। सन की रस्सी के बनी हुई जाली में उस पात्र को पुनः ज्यों का त्यों रखकर मैंने प्रतिरोध हाथ में ले लिया। दोनों सेनाओं के उन्मत्त सैनिक योद्धाओं ने अपने रथों पर कि युद्ध के कारण आधी टूटी हुई पुष्प मालाएं पूरी तोड़कर जय घोष करते हुए अपने अपने सेना नायकों पर वर्षा की। किसी ने लक्ष्य साधकर सूर्यपुष्प की एक माला ऐसी फेंकी कि वह उसके सामने के रथ में राधे के कंठ में चुप पड़ गई। मैंने अपने कंठ की नील कमलों की विशाल माला रथनील पर से ही अर्जुन के नीले कंठ में डाल दी। आज मेरी भी कसौटी थी, हाँ कसौटी। आदर्शवाद की प्राणों से चिंता करने वाला पहला कौंतेय जीवित रखा जाए या व्यवहारवाद का स्पष्ट पक्ष लेकर पांचों कौंतेयों को बचाया जाए, ऐसी अत्यंत विकट कसौटी थी वह। मेरा मन अधिकाधिक व्यवहार की ओर ही झुक रहा था, क्योंकि अकेले अर्जुन के गिर जाने पर अन्य पांडव भी अपने आप ही गिर जाने वाले थे। साक्षात मामा का वध करते समय मेरी भुजाएं मुट्ठी का प्रहार करती हुई नहीं कांपी थी। दंत वक्र, विदूरथ, श्रृंगाल, शाल व पौंड्रक, इनको दंड देते समय मेरे हृदय की धड़कन कभी नहीं बढ़ी थी। शिशुपाल जैसे फुफेरे भाई पर सुदर्शन छोड़ते समय मेरे पलक कभी भींगे नहीं थे, परंतु आज हाथ में नंदी घोष के बलगाया मंद मंद स्पंदित हो रही हैं। यह मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अपनी अकरुण अवहेलना के कारण उस दानवीर ने समय समय पर यद्यपि भीष्म, अर्जुन, भीम इन सबको तथा स्वयं द्रौपदी को भी उतने ही प्रबल विरोध से छेड़ा था, तथापि मेरे प्रति उसकी जो अवाक मूक भक्ति थी वह हम दोनों की भेंट के समय उसके असह्य नेत्रों से मेरी पीठ की नाली पर टपके हुए अश्रुओं से अच्छी तरह ज्ञात हो चुकी थी। मातृतुल्य राजमाता कुंती देवी और उसका अबोल मुख संबंध मैं पूर्ण रूप से जान चुका था। मेरी जीवन यात्रा में जिन लोगों की मुख भक्ति थी कि त्याग की और प्रेम की कोई उपमा नहीं थी, वे वास्तव में चार ही व्यक्ति थे, माता देवी की, राजमाता कुंती देवी, कर्ण और गोकुल की राधा। विचारों के आवर्तों को रोकने के लिए मैंने पांच जन्य फूंका बड़ी जोर से। चंदन का लेप किए हुए अपने सुदृढ़ मानसर वज्रदंडों को सवार कर कर्ण और अर्जुन ने नसे तान कर अपने अपने शंख फूंके। दोनों सेनाओं के रणवाद्यों से समीपस्थ टीला प्रकंपित हो उठा। हिमालय के दो धवल और उन्नत शिखरों जैसे वे एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो गए। उनकी आंखों की तेजस्वी पुतलियां अचूक पहचान कर सामने खड़ा योद्धा कौन सा बाण फेंकेगा इसका अनुमान लगाने में लगे। आनक, गोमुख, मृदंग, रणभेर, डिंडिम इन रौद्र रणवाद्यों के तुबल में ध्वनि क्षण प्रति क्षण बढ़ने लगी। क्षण भर आंखें बंद कर कर्ण ने सूर्य स्त्रोत पढ़ा। अर्जुन ने भी मेरी प्रार्थना करने वाले श्लोक आंखें बंद कर बुदबुदाना प्रारंभ किया। आंखों हाथों के शंख उन्होंने लकड़ी के खांचे में जैसे के तैसे रख दिए। शस्त्र छोड़ने के लिए वे तत्पर होने लगे। एक क्षण को ही शांति छाई। उसके बाद दोनों एकदम ही कान के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जना करते हुए एक दूसरे पर बाणों की भयानक वर्षा आरंभ कर दी। उनके बाण आकाश में ऐसे जा रहे थे कि दोनों सेनाओं को ऐसा आभास हुआ मानो तारक मंडल सहित आकाश टूट कर देह पर गिर रहा हो। विगत 16 दिनों में हृदय को थर्रा देने वाली ऐसी बाण वर्षा स्वयं मैंने भी कभी नहीं देखी थी। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, इन्होंने जो संग्राम किया था उससे इन दोनों का संग्राम सर्वसंहारक था, सबको रोमांचित कर देने वाला था। टिड्डी दल की तरह उनके बाण असंख्य थे। बंद गोष्ठ में वे विविध रंग के घोड़े द्वार खुलते जैसे स्वच्छंद दौड़ने लगते हैं, वैसे ही वे क्षण भर में प्रत्यंचा पर आरूढ़ होकर दौड़ रहे थे। उनके तीक्ष्ण टापों के नीचे असंख्य योद्धा जीवन के अंतिम श्वास अर्पित करने लगे। ग्रीष्म में पिघलने वाले हिमालय की तरह दोनों सेनाएं क्षीण होने लगी। मानसरोवर के पास का टूटा हुआ हिमखंड टूटकर सरोवर में गिरते ही श्वेत शुभ्र लाखों राजहंसों के झुंड प्राण लेकर जैसे ऊपर भागने लगते हैं, वैसे ही उनके श्वेत जिम्ह बाण उनके विशाल धनुषों से स्वच्छंद छूटने लगे। सू करते हुए टीढ़े मेढ़े मोड़ लेते हुए एक दूसरे पर टकराने लगे। उनकी गति से क्षण भर को आच्छादित आकाश उनके टक्कर होते ही चमकने वाले तारों जैसे स्फुलिंग से एकदम भास्वान होकर प्रकाशित होने लगा। सैकड़ों हजारों कपिश बाण आकाश में फेंक कर वे उनसे मृग नक्षत्र जैसी वर्षा ऋतु पर करने लगे शत्रु पर करने लगे। उन्हीं के बीच से श्वेत जिम्ह बाणों के विद्युत जैसी असंख्य सर्पाकृति टेढ़ी रेखाएं बनाकर उन जिम्ह बाणों से एक एक प्रमुख व अचूक लक्ष्य बनाकर एक दूसरे की सेना छीण करने लगे, सामर्थ्य कम करने लगे। सैनिकों को यही पता नहीं चल रहा था कि बाण कहाँ से आ रहे हैं। जैसे वाल्मीकि से दीमक बाहर निकल पड़ती है, वैसे ही उनके बाण थे। शतश्रृंग पर्वत के निकुले किनारों को अपने सशक्त नखागरों से पकड़कर खड़ी हुई मटमैले गरुण पक्षियों की पंक्ति सिर पर मेघ संकुल आकाश में बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट होते ही जैसे एकदम भागने लगता है, वैसे ही उनके मटमैले रंग के असंख्य कपिश बाण छूट रहे थे। क्षण भर में गगनमंडल को आच्छादित कर रहे थे, कुरुक्षेत्र को प्रकंपित कर रहे थे। उसके रथ के सारथी को निर्बल करने के लिए अर्जुन मेरे सिर पर से उसके घोड़ों की दिशा में बाण के समूह फेंकने लगा। परंतु शल्य सचमुच ही कुशल सारथी था। अपने हाथ में लगी बलगाओं को झटके देकर क्षण में वह पांचों घोड़ों को घुटने से पैर मुड़वा कर नीचे बैठा रहा था। क्षण में वह पिछले पैरों के सुदृढ़ खुरों पर पांचों घोड़ों को ध्वजदंड की पादभूमि के बराबर ऊंचे उछाल रहा था। कभी कभी वह ऊंचे विशालकाय घोड़े के साथ ही उसके शस्त्रों से ठसास भरे हुए भारी रथ को एकदम गर्र से इस प्रकार घुमाता कि उसके लौहमय पर्श भाग पर धड़ाधड़ टकराने वाले अर्जुन के बाण लक्ष्य भ्रष्ट होने के क्रोध से चिंगारियां फेंकते हुए नीचे कीचड़ में टपाटप गिर रहे थे। रथ के आसपास कीचड़ और अधिक खदबदाने लगी। अपने अपने सेना नायकों को प्रोत्साहन देने और सचेत करने के लिए आसपास खड़े योद्धा उनके नामों का अखंड जय घोष करने लगे। अब वह आवाज अन्य सभी आवाजों की अपेक्षा अधिकाधिक गगनभेदी होती जा रही थी। क्षण भर तक विक्षिप्तों की तरह दोनों केवल बाण वर्षा ही उनके देहों पर सुदृढ़ और लौह कवच असंख्य बाणों के तीक्ष्ण नोकों को प्रभावहीन बना रहे थे, लेकिन दोनों की ही अनावृत भुजाओं के घावों से उष्ण रक्त प्रवाह बह रहे थे। उसकी ओर ध्यान देने का समय भी उनके पास नहीं था। उस रक्त पर परस्पर मृदुल संबंध है यह बात अप्रफुल्ल उत्फुल्ल कर्ण के ध्यान में भी नहीं रही थी। मत्स्य, पांचाल, सैंधव, गांधार इनके दलों के सैकड़ों सैनिक देखते ही देखते पके हुए औदम्बर फल की भांति टपाटप नीचे गिर पड़े। यह देखकर दोनों सेनाओं को भयभीत योद्धाओं ने हाथों के शस्त्रों को रोक लिया। उन दोनों के लिए संपूर्ण सम्रांगण को पूरा छोड़कर वे विस्फारित नेत्रों से केवल प्रेक्षक बन गए। आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों का प्रलयकारी संग्राम देखने लगे। अब वे दोनों ही प्राणों के मोल अत्यंत कष्ट सहकर प्राप्त किए हुए दिव्यास्त्र एक दूसरे पर फेंकने के लिए सज्जित हो गए। इस समय उनको जन्म देने वाली राजमाता स्वयं कुंती देवी भी यदि सम्रांगण में आ जाती तो वह भी यह स्वीकार न करती कि ये एक दूसरे के भाई हैं। जीवन के दो परस्पर विरोधी ध्रुवों के एकदम कगार पर जाकर इस समय वे खड़े हो गए थे। उनके सामने केवल एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था, सम्मुख खड़े योद्धा के निष्प्राण काया। उसी के वे प्यासे हो रहे थे, स्वयं को पूर्ण रूप से भूले हुए थे। सुनहले भाथे में रखा हुआ एक सर्पमुख दिव्य अजस्त्र बाण, जिसका अग्रभाग सतत चंदन के चूर्ण में दबाकर रखा गया था, कर्ण ने अर्जुन पर छोड़ने के लिए बाहर निकाला। उसके अनजाने में ही उस बाण पर एक नाग शक्ति ने संचार कर लिया था। अर्जुन के कंठ का लक्ष्य साध कर उसने मंत्र बुदबुदाते हुए वह भयानक बाण छोड़ा। बाण कंठ को लक्ष्य बनाकर वायुवेग से चला आ रहा था। उसका अर्जुन को जरा सा भी भान नहीं था। मण्यरथ ने वलगाओं को चपलता से खींचकर घोड़ों की पीठ पर एक ऐसा झटका दिया कि पांचों घोड़े एकदम पैर मोड़कर गप्प से नीचे बैठ गए। अर्जुन के कंठ का प्राणघाती लक्ष्य चूक गया। रथ नीचे झुक जाने के कारण उसके सिर पर रखे किरीट पर खन्न से टकराते हुए उस भयानक गतिमान बाण ने उसके मुकुट को गिरा दिया। खनखनाता हुआ वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिर पड़ा। उसके नीचे जो गोलाकार शिरस्त्राण था वह भी लुढ़क कर रथ में जा गिरा। अर्जुन ने मुक्ति की सांस ली। उसके मेचक कुंचित केश बिखर गए। उसकी ओर देखकर मैं हंस पड़ा। कटी से लपेटा हुआ श्वेत शुभ्र अतलशी तुकूर खोलकर अर्जुन ने अपने केशों के चारों ओर लपेट लिया। नियति का आह्वान अब तो अधिकाधिक उग्र होने लगा। हिमालय से गिरने वाले गंगोत्री के प्रपात जैसा एक श्वेत बाणों का प्रवाह बरसाकर अर्जुन ने उसके साथ शल्य को पिंजड़े में शेन की तरह एकदम एक स्थान पर बंदी बना दिया। अब वह कुशल सारथी इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। सामने स्थित जत्ररथ एक स्थान पर स्थिर हो गया। कर्ण के चुने हुए बाण मेरे क्रीट पर होते हुए धन छड़ी पक्षियों के झुंड की तरह सू सू आवाज करते हुए दौड़ रहे थे। घड़ी भर में इस घनघोर युद्ध में उसने कभी भूलकर भी एक भी बाण मेरी ओर नहीं फेंका। संतप्त अर्जुन ने दृढ़ मन से मस्तक पर खिसकते हुए वस्त्र को संवार कर अग्निस्त्र से पहले के सूचक मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अंजनी के प्रफुल्ल वृक्ष दंड की तरह वह उत्फुल्ल हो उठा था। एक प्रकार का अत्यंत दिव्य तेज उसकी मुखमुद्रा से निस्सृत होने लगा। लाल पंखों की बहुत सी कलगियां मस्तक पर धारण करने वाला सहस्त्रों कारण्डव पक्षी दृश्य द्वितीय के पात्र पर जैसे एकदम झपटते हैं, वैसे ही अर्जुन के गांडीव धनुष से छूटे हुए अगणित अग्निबाण मेरे सिर पर से आग उगलते हुए सामने की ओर फरफराते हुए जाने लगे। समस्त आकाश मंडल यज्ञ कुंड की तरह बन गया है। इस भय से कौरव सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। सूर्यबिंब का तप्त रस ही देह पर गिर रहा है। इस विचित्र भय से अनेक मूर्छित हो गए। अर्जुन के बाण अग्नि की वर्षा करने लगे। अर्जुन के अग्नि बाणों को निष्प्रभ करने के लिए कर्ण ने घुटने टेक कर वरुणास्त्र के लिए दिव्य मंत्रों का आंखें बंद कर आह्वान किया। अर्घदान करते समय उसकी अंजलि से गिरा हुआ जल ही आज्ञाकारी सेवक की भांति उसकी सहायता के लिए काले मेघों के साथ बिजली का अनिर्बंध तांडव नृत्य लेकर दौड़ आया। उसने उनके पुच्छ भाग में हाथी के कान जैसे चमड़ों के पंख लगे हुए थे ऐसे अमोघ बाण इनकी भारी संख्या में फेंके कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में व्याप्त हवा की रिक्तता को क्षण भर में नष्ट कर दिया। आसपास छाए काले घने क्षण भर में रणभूमि पर गिर आए। गड़गड़ाते हुए मूसलाधार वर्षा करके उन्होंने अर्जुन के अग्नि बाणों के पीछे छिपी हुई उसके मन की आग भी बुझा दी। उस पानी के दान से उस दानवीर ने अधमरे आहत वीरों को भी पुनः जीवन का दान दिया। परंतु उसको पता नहीं था कि उसी के वर्णास्त्र से उसके रथ के चारों ओर कीचड़ और अधिक संचित होती जा रही थी। कर्ण के वरुणास्त्र के बरसते हुए मेघों को हटाने के लिए अर्जुन ने निवारक वायु व्यास्त्र की कुशल योजना की। तीव्र गति से आवाज करते हुए पवन ने आकाश में गिरे हुए मेघों के पटल को विच्छिन्न कर दिया। कुरुक्षेत्र पुनः सूर्य किरणों से चमकने लगा। अर्जुन का वायु व्यास्त्र बहुत से रथों की ध्वजा पताकाओं को खिलौना बनाकर उड़ा ले गया। आनंदित होकर अर्जुन ने जयनाद करते हुए वज्रास्त्र का अभिमंत्रण कर असंख्य तीक्ष्ण शस्त्रों को लेकर दौड़ने वाला वज्रास्त्र कर्ण पर फेंका। चित्र विचित्र आकारों के शस्त्र तीव्र गति से चले आ रहे हैं। यह देखकर तिल भर भी विचलित न होते हुए कर्ण ने प्रत्युत्तर में महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किए गए भार्गववास्त्र की योजना की। दोनों शस्त्रों के दिव्य और संहारक शस्त्र भयानक खनखन करते हुए एक दूसरे से टकराए, फिर स्फुलिंग बरसाते हुए धरती पर गिर पड़े। अर्जुन ने दिव्य सर्वनाशी ब्रह्मास्त्र फेंका। बड़ी दृढ़ता से उसने उसका भी निवारण किया। इतना ही नहीं बल्कि उसके अचूक बाणों से हमारे नंदी घोष पर फड़फड़ाते हुए ध्वजा पताका भी स्थान स्थान पर फट गई। वरथ की हाल को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ रहा था। मुड़कर वे बाण हमारे रथ में घुस रहे थे। पिनाक, पाश, तोमर, बिंदीपाल, चक्र, त्रिशूल, सभी प्रकार के शस्त्र उन्होंने एक दूसरे पर फेंके। कोई थक नहीं रहा था। युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तीसरा प्रहर समाप्त कर सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। इंद्र और बाली, नहुष और इंद्र, जरासंध और भीम, इन सबके संग्रामों से उनका संग्राम अति ही भयानक था। हृदय थर्रा देने वाला, क्षण प्रति क्षण उग्र होने वाला। निशीत, नाराज, जिम्म, सन्नत पर्व, कंकपुंख, वस्तिक, रुक्मपुंख, छुर, इन असंख्य बाणों का जाल सा संपूर्ण सम्रांगण पर बिछा हुआ था। उनकी इच्छा न होने पर भी उनके फेंके हुए दिव्य अस्त्रों से असंख्य योद्धा धराशायी हो गए। दोनों सेनाओं के वीरों की गिनती अब केवल हजारों में ही की जा सकती थी, इतना भयानक संहार उन दोनों ने किया था। दोनों ही हट नहीं रहे थे, क्षण भर भी थक नहीं रहे थे। 16 दिनों से जो युद्ध हुआ था उसकी अपेक्षा उनका एक दिन का युद्ध अब कुरुक्षेत्र से भी देखा नहीं जा सकता था। अंत में कर्ण ने अत्यंत कष्ट सहकर महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किया हुआ परशुराम का अथर्ववर्ण अस्त्र अर्जुन पर फेंका। उसके लक्ष्य को चूक जाने के लिए मैंने सारे घोड़े गर्र से गोल घुमाए। नंदीघोष की इस प्रकार 15-20 हाथ पीछे लिया कि अब वह कीचड़ की पट्टी में उतर गया। रथ चक्रों को अगौन का लेप मैंने इसीलिए तो दिया था। अर्थवर्ण अस्त्र का आघात चूक गया। उसके रथ की दिशा में हमारे रथ का पृष्ठभाग होता जा रहा था, यह देखकर शल्य होठ चबाता हुआ हिलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु बाणों के पिंजरे में जकड़ लिए जाने के कारण उससे हिला नहीं जाता था। फिर भी घोड़ों को सचेत करने के लिए नसें तान कर ललकारते हुए उसने हाथ की वलगाओं को फटाफट श्वेत घोड़ों के पीठ पर पटका। घोड़ों ने खुर गड़ाकर पूरी शक्ति से रथ को मोड़ने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया, परंतु वह रथ एक सूत भर भी न हिला। अब वह हिलने वाला नहीं था। लगभग आधी घड़ी तक एक ही स्थान पर दलदल में फंसा हुआ वह रथ खड़ा रहा। उसे रथ चक्रों के चारों ओर दलदल को सूर्य किरणों ने तपाकर गाढ़ी कर दी थी। रथ को धरती में जकड़ लिया था। अब अपने पुत्र की और अधिक किसी की प्रकार की मानहानि देखना सूर्य नहीं चाहता था। शायद वह उसे अपने चिरंतन धाम की ओर ले जाना चाहता था। तक शल्य ने रथ में रखे बाण भाथे छोड़कर शेष सभी शस्त्र नीचे फेंकने की कर्ण से बात कही। वह जल्दी जल्दी शस्त्र बाहर फेंकने लगा। चिकनी रणभूमि पर पुनः पुनः पैर के खुर परिश्रम से गड़ा गड़ा कर घोड़े मुंह के झाग गिराने लगे। फिर भी रथ तिल भर भी आगे नहीं सरका। उसके रथ का बायां चक्र रणभूमि में फंस गया था, जैसे महेंद्र पर्वत की कीचड़ में पथ भ्रष्ट वृषभ फंस जाता है वैसे ही। मैं अर्जुन किरंदी घोष को रथ के चारों ओर मंडलाकृति में घुमाने फिराने लगा। उस समय भी वह बाण फेंक रहा था। अंगराज रथ ट्रस से मस नहीं हो रहा है, बाया चक्र धरती ने निगल लिया है। शल्य भयाकुल स्वर में चिल्लाया, माद्रे घबराओ मत, रथचक्र बाहर खींचता हूँ। पीठ पर भाथे को तथा हाथ में अखंड बाण छोड़ने वाले विजय धनुष को संभालता हुआ वह रथ से नीचे उतरा। नीचे पश्चिम क्षितिज के सोपान पर उतरने वाले सूर्य की तरह मेरे मन में विचारों को बात्या चक्र चलने लगा। वह रथ से नीचे सूतपुत्र अंगराज सेनापति दिग्विजयी दानवीर अजय धनुर्धर कर्ण या कौंतेय प्रथम पांडव। उसने दाएं हाथ बाएं चक्र के सुदृढ़ आरे में डाला, रथ का उद्धार करने के लिए पूरी शक्ति एकत्रित की। भुज दंडों के सुदृढ़ चीमण स्नायु फूल उठे, भाल पर श्वेत बिंदु संचित हो गए। जोरदार झटका लगाया, रथचक्र हिला नहीं, वह भारी आरा ही सर्र से उसके हाथ में आ गया। उसके हाथ में धनुष देखकर अर्जुन अब भी बाण फेंक रहा था। वे बाण उसकी खुली भुजा में गड़ने लगे। वह नीचे बैठ गया, जितना गढ़ सके उतना धनुष धरती में नीचे गाड़ कर उसने उसे स्थिर किया। बाण छोड़ने का बैठकी पैतरा ग्रहण किया। बाएं हाथ से अपनी पीठ पर से बाण निकालकर वह उन्हें एक ही हाथ से विजय धनुष पर चढ़ाने लगा। दांतों के सुदृढ़ पकड़ में प्रत्यंचा पकड़कर उसको शक्ति से खींचकर दांतों से अचूक बाण फेंकने लगा। दाएं हाथ से रथचक्र का उद्धार करने के लिए प्राणपण से जूझने लगा और एक दो भारी आरे निकल आए, परंतु रथचक्र नहीं हिला नहीं, हिलने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से एक मर्मभेदी बाण छोड़कर जिससे अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर निश्चयपूर्वक उसने हाथ से विक्रमी विजय धनुष भी नीचे रख दिया। कीचड़ में दोनों हाथ घुसाकर संपूर्ण सामर्थ्य से रथचक्र बाहर निकालने के लिए। प्रातःकाल से ही यही एक क्षण ऐसा आ रहा था जबकि उसके हाथ से धनुष दूर हो रहा था। एक क्षण, नितांत महत्वपूर्ण एक ही क्षण, यदि वह निकल गया तो मैंने लकड़ी की नालिका में औषधि वनस्पति अर्जुन की नाक के सामने रखी। वह क्षण भर में सचेत होकर पुनः खड़ा हो गया। उसको निःशस्त्र देखकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। निःशस्त्र पर शस्त्र नहीं फेंकना है यह सोचकर गोकुल के चारागाह में देह से देह रगड़ाते हुए घुसने वाले गायों के झुंड की तरह मेरे मन में के प्रांगण में विचार दौड़ने लगे। नंदीघोष के 5 घोड़ों के बलगाएं में धड़ाधड़ निरंतर उनकी पीठ पर पटकने लगा। कुछ सूझ नहीं रहा था। महत्वपूर्ण एक ही क्षण, नहीं तो रथचक्र का उद्धार कर वह आकाशवीर पुनः टूट पड़ने वाला था। मेरे हाथ में वलगाएं 5 थी, परंतु प्रतोद एक ही। एक या 5, वलगाएं या प्रतोद, प्रतोद या वलगाएं, 5 या 1, आह कुछ भी समझ में नहीं आता था। इतने में विचार की एक प्रकाश किरण चमक गई, अतिशय व्यवहारिक, अतिशय निर्विवाद। वलगा से घोड़े रोके जाते हैं, प्रतोद से घोड़े भगाए जाते हैं। दूसरे ही क्षण मैंने दाएं हाथ के प्रतोद रथ पर बने व्याघ्रचर्म की थैली में खोंस कर रख दिया। वलगाएं ऊपर उछाली। दाएं हाथ की तर्जनी को रथ चक्र का उद्धार करने के लिए जूझते हुए उस ज्वालामुखी कर्ण की ओर कर अर्जुन से मैं बोला, अर्जुन अर्धचंद्राकृति आंजलिक बाण, परंतु वह निशस्त्र है, पदस्थ है, मैं रथारूढ़ अर्जुन झिझका, अर्जुन यह आदेश है। मेरा स्वर कठोर हो गया, तीक्ष्ण हो गया, भ्रुकुटियाँ तन गई। आज्ञाकारी अर्जुन ने आंजलिक बाण सर से तुड़ीर में से खींचा। प्रत्यंचा ठीक है या नहीं यह देखने के लिए उसने अपनी चुटकी से पकड़कर उसका एक बार टंकार किया। उतनी बस उतनी सी सूक्ष्म ध्वनि सुनकर ही कर्ण ने रथ चक्र पर केंद्रित अपनी आँखें प्रतक्षण हमारी ओर फेरी। अर्जुन को संधान के लिए सज्जित धनु देखकर वह बाएं हाथ का पंजा फैलाकर उसे तेजी से हिलाता हुआ चिल्लाया, अर्जुन ठहरो, मैं निशस्त्र हूँ, पदस्थ हूँ, निशस्त्र पदस्थ पर अस्त्र चलाना युद्ध धर्म नहीं, तुम वीर हो, क्षत्रिय हो। इतने में ही उसने महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किए हुए ब्रह्मास्त्र को स्मरण करने का प्रयत्न किया होगा, वह उसे याद ही नहीं आया। मैं जानता था वह मरने से कभी नहीं डरेगा, केवल जिस शस्त्र पर उसने आजीवन प्राणों से अधिक प्राप्त की प्रेम किया था उस शस्त्र की प्राप्ति के बाद अब वह मृत्यु की चाहत था, परंतु अब वह भी उसके भाग्य में नहीं थी। यह उचित नहीं था और अब तो वह संभव भी नहीं था। उसका मर्म भेदी कथन सुनकर अर्जुन भी असमंजस में पड़ गया, विचलित हो गया। उसके हाथों में सुसज्जित धनुष धीरे धीरे नीचे झुकने लगा, निश्चय डगमगाने लगा, होंठ फिर सूख गए। अब उस राधेय को जीवन का एक क्षण भी देना व्यर्थ था, क्योंकि उसके जीवन की यथार्थता अब कोई नहीं जान सकता था। तदर्थ अर्जुन के मन को दृढ़ आधार देने के लिए व्यवहार का विलोभनीय तत्व ज्ञान मुझे फिर सुनाना था। जिस धर्म की दुहाई कर्ण दे रहा था उसी धर्म को उसके ऊपर पलट कर अब मुझे विगत स्मृतियों का स्मरण अर्जुन को कराकर उसके मन को दृढ़ बनाना था। डगमगाते हुए भ्रांत अर्जुन को मुझसे फिर सुमेर की तरह खड़ा करना था। मेरे मुख से शब्दों की यमुना बहने लगी, फेनिल भयंकर बाढ़ की तरह। धर्म राधेय, धर्म का अर्थ भी क्या तुझे विदित है? सूतपुत्र कुरुओं के प्राचीन सभागृह में पांचाली को वारांगना कहते समय तेरा यह दिव्य धर्म कहाँ चला गया था? पांच पुत्रों के साथ कुंती देवी को नंगे पांव वन जाते देखते समय तेरा धर्म कहाँ छिप गया था? लाक्षागृह में पांडव जलकर राख हो गए या वार्ता सुनते समय तेरे धर्म ने क्यों चित्कार नहीं की? जब 16 वर्ष के किशोर अभिमन्यु को तुम 6 जनों ने मिलकर घेरा था, हे सुतपुत्र, उसका स्मरण तुझे इस समय हो रहा है, यह धर्म तुझे अब क्यों नहीं याद आया? अर्जुन संधान करो, मैंने तर्जनी से ठीक कर्ण के कंठ की ओर संकेत किया। उस समय भी वह हंस पड़ा, उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए नहीं, मुझे केवल मुझे वंदन के लिए, केवल मैं ही यह समझ सकता था। युद्ध भूमि पर उसका अंतिम अभिवादन अवाक नेत्रों से बहता हुआ। अर्जुन के धनुष से टंकार करता हुआ निकला तीव्र गति आंचलिक बाण उसकी पुष्ट गिवा पर पहने हुए लौ कवच को भी भेद कर उसके कंठनाल को आधा छेद कर कच्छ से जा धंसा। उस महारथी रथचक्र के पास कीचड़ में गिर पड़ा विजय धनुष दूर जा गिरा। उसका अधरीय रथचक्र निकालते समय कीचड़ से लथपथ हो गया था। बाएं रथचक्र की जीर्ण हुई रस्सी जैसे ही उसने यातना का एक मर्मभेदी झटका दिया तड़ाक से टूट गई, रथचक्र धूरी से उखड़ गया, कर्ण घायल होकर गिर पड़ा। यह वार्ता सुनते ही दोनों सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए। यह बात किसी को भी सत्य प्रतीत नहीं हुई। प्रत्येक योद्धा आसपास के योद्धा से पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? कठोर निर्णय पूर्ण करने के लिए अंत समय में उसको सुतपुत्र कहते हुए मुझे जो असंख्य यातनाएं हुई उन्हें मैं ही जानता हूँ। हाथ से वलगाएं मैंने नीचे डाल दी। समाज रचना के लिए खड़ी की हुई मन की तत्व निष्ठा की दीवार भी ढह गई। मैं रथ से नीचे उतरकर उसकी घायल देह की ओर राधेय कहता हुआ हाथ उठाकर अंधाधुंध दौड़ने लगा। उससे प्राणाधिक प्रेम करने वाला अश्वत्थामा तो बहुत पहले ही उसके रथ के पास आ पहुंचा था। उसके गिरने की बात सुनकर दुर्योधन मूर्छित हो गया, युद्ध रोक कर रथ में ही गिर पड़ा, टूट कर गिरने वाले तट के कगार की तरह। अश्वत्थामा के साथ 5 विशालकाय योद्धा अपने सेनापति के आहार शरीर को शिविर के समीप सूखी भूमि पर लाए। रक्त के फुहार उसके कंठ से निकलकर लहूत्राण पर पड़ने लगे। उसकी अधमुधी नीली आंखें एकटक नीले आकाश की ओर देख रही थी। जैसे ही अश्वत्थामा अपना मुख उसके नेत्रों के सम्मुख ले गया, उसने प्रयत्नपूर्वक आंखें खोली। गुरुपुत्र, अश्वत्थामा के मस्तक पर बंधे वस्त्र की ओर देखता हुआ वह धीरे धीरे बोला, उसके होंठ फड़क रहे थे। सब कुछ भूलकर अश्वत्थामा दौड़ पड़ा। इससे कर्ण को इतना आनंद हुआ था कि वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अश्वत्थामा उसका भाव जान गया, झटपट सिर पर बंधे हुए वस्त्र की हनु के नीचे लगी हुई गांठ खोलकर उसने वह वस्त्र नीचे धूल में फेंक दिया। उसके मस्तक पर कर्ण के मांसल कुंडल की तरह एक जन्मजात लालवर्णी मांसल मणि थी। उन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ऐसे दिव्य उपहार प्राप्त नहीं हुए थे। अंतिम सांस से गिरने वाले उस महारथी का दायां हाथ अचानक उठाकर अश्वत्थामा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने सिर पर स्थित मांसल मणि पर रखा। उस मणि का दिव्य स्पर्श होते ही उसको अपने दूर गए कवच कुंडलों का स्मरण हो आया। उसकी नीली आंखें एकदम पूरी खुल गई। उन दोनों के मुखों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अश्वत्थामा के आंसू उसके आंसुओं में मिल रहे थे। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने जो वर्षा की थी उसकी कुछ बूंदें दूर दृष्टि के किनारे ओस की बूंदों की तरह चमचमाती हुई मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चमचमाते हुई ओस की बूंदें, अब क्षण भर में ही वायु का एक झोंका आएगा और वे बूंदें भूमि में विलीन हो जाएंगी। युधिष्ठिर अर्जुन सहित पांचों पांडव तथा सभी योद्धाओं ने उसके चारों ओर इतना सघन घेरा बना लिया था कि चींटी भी नहीं घुस सकती थी। उसका पुत्र चित्रसेन उसके पास अष्टपूर्ण नेत्रों से बैठा हुआ था। सभी स्तब्ध थे। उसके क्षण में बंद हो जाने वाले, क्षण में आधे खुल जाने वाले नेत्र सबके ऊपर फेरने लगे। शायद वह दुर्योधन को देखना चाहता था। वह उसको आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी ओर देखते ही उस स्थिति में भी उसके मुख पर हास्य की एक सूक्ष्म रेखा स्पष्ट खिंच गई। प्रयत्नपूर्वक उसने फिर अपनी आंखें पूरी खोली। भारी प्रतीत होने वाले दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर उसने अपने मस्तक पर से मुकुट उतार कर उसे अचक पचक हाथों से मेरे चरणों पर रख दिया। राजसु यज्ञ के दिन उसे अनावृत मस्तक से यज्ञ मंडप पर रखवाया था। अब वह मुकुट भी सभी अवाक भाव से मेरे चरणों पर रख रहा था। प्रगाढ़ भक्ति से उसके द्वारा चरणों पर रखे गए उस मुकुट को मैंने नीचे झुककर उठाया। पहली बार मेरी आंखों भी सजल हो गई। अब उसका उस मुकुट पर कुछ भी अधिकार नहीं था। मैंने पीताम्बर से उस पर जमी हुई धूल पोंछी। यह देखकर पांडव सहित सभी योद्धा विस्मित हो गए। वे भला क्या जानते, कैसे जान सकते थे। चारों ओर शांति ही शांति छा गई। अपने नेत्रों के जल को रोकता हुआ चित्रसेन उसके मुख में पवित्र नदियों का जल डालने लगा। सांस रोककर अपने आधे कटे हुए कंठ से जल का घूंट भरते समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। प्रत्येक जन आंखों में प्राण समाकर उसकी ओर देखने लगा। गंगा में अर्घ्य दान करने वाला वह भक्त गंगा का पवित्र जल पी रहा था।